किचन महकेगा घर के स्वादों से, अपने मसालों से, वो भी परफेक्ट प्राइसेस पे। जैसे अक्टूबर 27 तक 9.07 केजी पिल्सबरी दिव्या और गोल्डन टेंपल आटा सिर्फ 9.99 पे।
वाह,
आई खुशबू
नहीं
आ जाएगी। एट फूड बेसिक्स, ऑलवेज मोर फॉर लेस।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
कि जदों वज्जियां कनेडा विच ताड़ियां, सुन लईयां अमरीका वाले आड़ियां।
सूफी अंदाज वाला बेमिसाल सितारा मिसिसागा दी धरती ते करेगा अपने फन दा मुजाहरा। सतेंद्र सरताज लाइव इन कॉन्सर्ट नियर यू एट पैरामाउंट फाइन फूड सेंटर 20 नवंबर शनिवार रात 7 बजे। फॉर टिकट्स एंड स्पॉन्सरशिप कॉल वरिंदर गिल 416-300-7706, कॉल अवतार रिहाल
416-561-1277।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktrucklube.com।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
अयो, हु इज द स्टेजर?
कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, लेटेस्ट स्टाइल, कलर, फैब्रिक, गोल्डन या फिर सिल्वर, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी फर्नीचर एंड डेकोर। कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, मस्ट सी, must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
नान एंड कबाब GTA में 6 लोकेशन और अब मिसिसागा में भी। नान एंड कबाब, ऑथेंटिक अगवान कुजीन, फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रिल आइटम्स एंड डिनर प्लेटर फॉर पिकअप एंड डिलीवरी। ऑर्डर थ्रू nandk.ca 90 एनिगम बुलेवार्ड मिसिसागा और ओंटारियो N401-905-501-9889 नान एंड कबाब।
शीला के हस्बैंड को देखो, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, दिन भर ऑफिस में काम और रात को शीला के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और एक हमारे नवाब साहब हैं, ऑलवेज लेजी।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपके हस्बैंड को चाहिए SBM का रेजुना जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिंस एंड इम्प्योरिटीज बिना किसी भी साइड इफेक्ट के। फॉर मोर इन्फो कॉल अशोक ऑफ SBM आयुर कैनेडा 905-790-7734 और विजिट एट एयरपोर्ट एंड सैंडलवुड कॉर्नर प्लाजा यूनिट 15 ब्रैम्पटन। रेजुना अब रोजाना।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नासिर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। 647-741-9000, 647-741-9000।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
Do you have body and foot related issues? Or are you tired of sitting for long hours? Aapki tamam takleefon ka ilaaj hai hamare paas. Dairy Health and Wellness Center, Physiotherapy, Massage, Orthotics, Chiropractor and Acupuncture. We accept all major insurance plans. Appointment ke liye call kare 905-956-6330. Dairy and Airport Road, Main Intersection, Mississauga. www.dairyhealthwellness.com.
उफ, घर लेना तो अब बहुत ही मुश्किल। अब तो सिर्फ तस्वीरें देख के ही घर ले सकते हैं।
लो भाई, तुम कॉल करो ना टीम हिना को और इंद्रजीत सजन को। उनके पास ब्रैम्पटन में अर्बन टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट है। 6 लाख कीमत है, 60,000 90 दिन में पे करना है। असाइनमेंट इसमें मौजूद है। लेवीज बिल्कुल कैप्ड है। इंटरसेक्शन मिसिसागा और सैंडलवुड। $5,000 की बचत भी हो सकती है डेकोर डॉलर्स में। टीम हिना 416-993-6600, 416-993-6600।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असिस्ट इन रियल एस्टेट। He will make mortgage easy for you. Kokab Javed, Mortgage Agent, 416-454-6065.
جی صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہمارے فہم ظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ 6:30 بجے تک ہوں گے۔ بس تیز۔ آج میں نے ایک بہت پیاری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آئی وانٹ یو کہ آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہماری یہ ہفتے کی دو چھٹیاں کیوں ہوا کرتی ہوتی ہیں؟ کیا وجہ؟ تاکہ 5 دن کام کرنے کے بعد پھر 2 دن ایک دم سے برین کو ریلیکس کیا جائے، اور انسان جب واپس آتا ہے منڈے کو تو زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ فعال ہوتا ہے۔ حالانکہ چھٹیاں کرنے کے بعد، میں تو جب واپس آتی ہوں تو مجھے تو چھٹیوں کے دن ہی یاد آتے رہتے ہیں، پرانی باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ کیا بات ہے صاحب؟ مگر اسی طرح سے اگر ہم دن میں سارا دن کام کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے وہ ایک بار ریسیٹ ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے یہ اکثر آپ کے ٹیلی فون پہ پرابلم آتی ہوگی، اگر آپ ایپل پے یا جو بھی کمپنی ہے اس پہ کہتے ہیں، آپ اس کو کبھی کبھی ٹرن آف کر دیا کریں، بیکاز ریسیٹنگ از مسٹ۔ اسی طرح آپ کے کمپیوٹرز بھی ہیں، اگر آپ کنٹینیوسلی اس کو چلاتے رہیں تو ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو ریسیٹ کرنے کے لیے ٹرن آف کرنا، شٹ ڈاؤن، پراپر شٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے سونا بھی بہت ضروری ہے، چھٹی ہونی بہت ضروری ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا مزے کی ایک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، مگر پلیز آپ اپنی بیلٹس باندھ کے رکھیے گا۔ 3:15 بجے کے قریب، یعنی اب سے کوئی 5-7 منٹ کے بعد میں آپ کو پاکستان لے کے چلوں گی، اور پاکستان سے क्विकली हम पाकिस्तान की जो न्यूज है उनको कवर करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक तो ARY के हवाले से सुना था कि ARY की जो जिस नाम से रन कर रहे हैं अब इंग्लैंड में, उन्होंने भी एक्सेप्ट की, अपनी गलती को एक्सेप्ट की, और जनाब इसहाक डार्स के हवाले से उन्होंने उनके लॉयर की भी फेस भी किया, पे किया और माजरत की भी उन्होंने ऐलान किया। इससे अलावा रेहम खान साहब का तो हमने, रेहम का तो हमने आपके साथ शेयर भी किया था, उन्होंने भी माजरत की थी कि जुल्फी बुखारी के साथ, क्योंकि कोर्ट में फिन कर लिया, रेहम भी इंग्लैंड में होती हैं और जुल्फी बुखारी भी बुनियादी तौर पे तो इंग्लैंड से ही ताल्लुक है। सुना है आजकल फिर भाग गए हैं इंग्लैंड में, वल्ला आलम बिस्सवाब, आई डोंट नो, मेरे पास इसकी कोई सही रिपोर्ट नहीं, मगर यस यही पता चला है कि ही इज इन इंग्लैंड। हाँ शायद अदालत के केस के सिलसिले में गए हुए थे, मगर अभी पाकिस्तान में तो अच्छा, इसमें मैं पाकिस्तान की बात तो कर ही नहीं रही, मैं कनाडा की बात करती हूँ। कनाडा में भी आप सोचिएगा कि पुल्स काउंट करती हैं, यहाँ पे भी पुल्स, और हमारी कम्युनिटी के बीच में तो अगर काउंसलेट तक जाना हो तो सिफारिश की ज़रूरत होती है, हालांकि काउंसलेट में सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, मगर हम ज़ाती तौर पर फील करते हैं कि अगर मेरी सिफारिश होगी तो बुनियादी तौर पर रिश्वत लेने वाला कभी भी रिश्वत नहीं लेगा अगर रिश्वत देने वाला रिश्वत देने के ऊपर तैयार नहीं होगा। चलिए पाकिस्तान को छोड़िए, कनाडा में भी हमें रिसोर्सेज के बगैर बात ही नहीं चलती। अच्छा तो आज मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जनाब जो हमारे एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, अजहर सिद्दीक साहब, वो हमारे साथ शामिल होंगे अभी अगले कोई 5-7 मिनट के बाद हमारे साथ शामिल होंगे। उनका बहुत शुक्रिया, जब मैंने उन्हें कॉल किया तो कल सुबह उनकी यानी पाकिस्तान के लिहाज से मॉर्निंग में उनकी कोर्ट में अपेयरेंस है, मगर पाकिस्तान में आपको तो जिंदा दिल, और ख़ासतौर पर लाहौर जो है जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, वहाँ पे तमाम जो कैफे स्टोर्स हैं वो भी रात को 12-1 बजे 2 बजे के करीब भी खुले हुए होते हैं। इस हवाले से ही वॉज ऑन द रोड विद हिज फैमिली, तो हम उनको भी थोड़ी देर में लेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ होंगे, बेशतर इसके जनाब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जनाब अजहर सिद्दीक जब तक हम उनको लेके आए। आजकल आसमा शिरासी के अगेंस्ट एक कोर्ट में, इंग्लैंड की कोर्ट में ही जारी होने लगी है, क्योंकि BBC पर उनका एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने डिफेम किया है पाकिस्तान की आर्मी को। मैं बल्कि एक रिपोर्ट देख रही थी कि बहुत से लोग हम में से एक ही प्ली लेते हैं कि जी अमेरिका के किसी जनरल का नाम हमें नहीं आता। भाई हम तो खुद अपने, हम तो रिश्तेदारों में जिस रिश्तेदार के पास कुछ नहीं होता उसका जिक्र करना पसंद नहीं करते, हम तो सिर्फ उस रिश्तेदार का रेफरेंस देते हैं जो पैसे के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से ऊंचा हो। मैं बेशुमार लोगों को टोरंटो में जानती हूं जो जब बात भी करते हैं यानी मुंह खोलते हैं तो वो कहते हैं फलाना जनरल मेरे चाचे का पुत्र है, ओ ज़ियाउल हक मेरा सगा पुपी का पुत्र सी। आप किसी को बात करते हुए देख लें, लोग इसी तरह बात करते हैं, जितने लोगों से आप बात करके देख लें। तो हम तो खुद बड़े बड़े रेफरेंसेस ढूंढ के रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी तस्वीर है या चाहे हमारी किसी मिनिस्टर के साथ तस्वीर है, हम उन तस्वीरों को भी इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी कॉमन हियर, वेरी कॉमन हियर। और पाकिस्तान में लोग जाहिर है अपने आप को उनको जानबूझ के उनको नाम याद रखते हैं, क्योंकि हमारे लोग शायद एक्सेसिबल होते हैं यानी काबिले पहुंच होते हैं। मुझे पता है शाजिया जी को भी मेरी बात ये ना पसंद होगी, अक्सर औकात जनरल बाजवा साहब जो इस वक्त आर्मी के चीफ हैं इनके बारे में, और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, ये मैं अपने कानों से डायरेक्ट उस पर्सन से मेरी बात हुई जहां से मैं आपके साथ शेयर करती हूं। मुझे भी, मैंने भी बिलीव कर लिया था, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर आई थी कि लिबर्टी में आवडी की एक डीलरशिप है जो जनरल बाजवा साहब के बेटे की है, और एक जनरल के बेटे के पास, फिर जनाब अगली खबर आ गई, अगली खबर आई कि जनरल साहब ने कहा है कि मेरी जमीन थी, मैंने वो सारी जमीन बेच के इसको ले दी, डीलरशिप ले दी, और इसकी किस्मत अच्छी थी कि डीलरशिप अरबों में चली गई, उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। अच्छा अब ये दोनों बातें मैंने सुनी हुई थी, हमने एक प्रोग्राम किया था, और ये प्रोग्राम जाहिर है मेरी तो कोई शुनीद है कोई नहीं, ना मुझे कोई जानने वाला है, ना मेरा कोई वाकफकार है, ना वडेरों में तो मुझे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता वडेरों में। تو وہ میرا پروگرام تھا جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے ساتھ. آف کورس سمیع اللہ ملک صاحب کی پلس جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے. میں تو سمیع اللہ ملک صاحب کو بھی نہیں جانتی تھی, میری تو ان تک بھی پہنچ نہیں تھی. شازیہ صاحبہ کو بہت شکریہ, ان کے جاننے والے تھے اینڈ ہی کیم اینڈ الحمد للہ آر پروگرامز آر گوئنگ ویری سکسیزفل ناؤ. تو سمیع اللہ ملک صاحب کے ساتھ میرا ایک پروگرام تھا جو میں نے کیا, جس میں ہم نے اسی ڈیلر شپ کا تذکرہ بھی کیا. وہ رپورٹ تھی, اخبار کی رپورٹ تھی جس کو ہم نے کور کیا. باجوا, جنرل باجوا صاحب کی بیگم صاحبہ کی کال آتی ہے, ان کی وائف کی کال آتی ہے, اینڈ شی ڈزنٹ نو می ایٹ آل, شی نوز شی از ان گڈ ٹرمز ود سمیع اللہ ملک صاحب. اور انہوں نے ملک صاحب کو کال کیا کہ ملک صاحب یس میرا بچہ انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے ضرور گیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ میں تو کئی دفعہ اس کی فیس نہیں پے کر سکتی تھی اور آپ ہی کے پاس میرا بچہ ٹھہرا ہوا تھا. یس وہ اس ڈیلر شپ میں کام ضرور کرتا ہے, ہماری بھی دوستیاں تھیں. اس ڈیلر شپ کا ایکچوئل اونر از فرام فیصل آباد. پھر اس جو ڈیلر شپ کا ایکچوئل اونر ہے اس سے بات ہوئی, اس نے کہا یس میرے ٹرمز تھے. جیسے ہمارے بعض اوقات فرینڈس ہوتے ہیں, فیملی فرینڈس ہوتے ہیں, تو ہماری فیملی فرینڈ شپ تھی. یس اٹ از مائی ڈیلر شپ. اور اس ڈیلر شپ کے فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک امپلائی کی ضرورت تھی, تو باجوا صاحب ان کی بیگم صاحبہ سے میرے ہمارے فیملی کے مراسم تھے. اس جاب کی اس پوزیشن کے لیے ہم نے اس لڑکے کو ہائر کیا تھا. اور آپ یقین کیجئے گا یہ دو لوگوں سے, باجوا صاحب کی مسز جنرل باجوا, ان کی بیگم صاحبہ نے ہماری اس پروگرام کو سننے کے بعد اپنا مدعا بیان کیا یا دکھ کا اظہار کیا تھا کہ آپ لوگوں نے بنا سوچے بنا تحقیق کیے کہہ دیا میرے بیٹے کے پاس تو اوڈی کار بھی نہیں ہے, اگر اس کو گاڑی بھی دی ہوئی ہے تو ڈیلر شپ کی طرف سے دی ہوئی ہے, جیسے یہاں کی ڈیلر شپس میں لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں. یہ مسز باجوا جو ہمارے جنرل صاحب ہیں, ان کی بیگم صاحبہ نے ہمارے اس پروگرام کے اوپر سمیع اللہ ملک صاحب کو کال کیا. اس کے بعد پھر ہم نے جو فیصل آباد میں ایکچوئل اونر ہے اس ڈیلر شپ کا, ہماری اس سے بات ہوئی. وہ بھی میری بات نہیں ہوئی, سمیع اللہ ملک صاحب سے ان کی بات ہوئی. اس نے کہا کہ یس اٹ از مائی ڈیلر شپ, اور میری ایک نہیں میری اس سے زیادہ ڈیلر شپ ہے. اور آپ کو بتائیے پاکستان میں جو لوگ بزنس کمیونٹی کے ہیں ان کی ڈیلر شپ ہے. جیسے میں اور آپ بعض اوقات ہم لوگوں کو جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار پوزیشن تمہارے پاس ہے, میرا یہ جاننے والا ہے, دیکھ لو اگر یہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو اس جگہ کے اوپر ہائر کر لو. دیٹس ویئر اٹ از. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب کی اوس ہے. میں تو بلکہ یقین کیجئے گا آپ, کبھی کبھی میرا دل پریکٹیکلی خون کے آنسو روتا ہے کہ خطے میں آگ لگی ہوئی ہے. افغانستان کی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی, چائنا جو ہے رشیا امریکہ اس علاقے سے خائف ہے, سی پیک کو مکمل نہیں ہونے دینا. انڈیا ابھی پچھلے دنوں ان کی آبدوز بھی ہمارے پانی کے بیچ میں آئی ہوئی تھی. اور ہمارے پولیٹیشنز, وہ جناب 12 ربیع الاول کا پروگرام ہو رہا تھا, ہوتے ہوتے وہ ریلی جو ہے وہ بدل گئی, اب کوئی بھوک ہڑتال ریلی میں یا پتہ نہیں کس ریلی میں, اور وہ اسلام آباد کو مارچ. ایک تو قوم کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, دے ہیو اونلی دس ڈسٹرکٹیو مائنڈ. اسی حوالے اور پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے بھی ایک الائنس بنانے کے بعد وہ بھی اپنی تحریک کے اوپر ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی. حالانکہ مجھے آج کسی کا اور بھی میں دیکھ رہی تھی میسج کہ جی یہ جو لوگ مہنگائی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, وہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. آج یہاں $1.49 پر لیٹر پٹرول ہے, تیل جو آئل ہے, آئل کی قیمت ڈبل ہے اس وقت. جو ہم یہ کووڈ ایک سال پہلے جس تیل کو ہم 599 کی ایک لیٹر کی بوٹل لیتے تھے, آج وہ $13 کی بازار میں پڑی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. کل میں کسی اور چیز کی بھی پرائس دیکھ رہی تھی, یعنی آل دا پرائسز آر ڈبل ناؤ اراؤنڈ دا ورلڈ. دس از اراؤنڈ دا ورلڈ. اینی ویز میں آپ کو پاکستان لے کے چلتی ہوں, بہت شکریہ. مگر اظہر صاحب سے ملاقات سے پہلے تو وہ وکیل بڑے آدمی ہیں اور بیوٹیفل ان کے وی لاگس بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آئیے ان کے 3 وی لاگس ہیں جن کو ہم نے کوئکلی کور کرنا ہے. اس میں آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اظہر صدیق صاحب کا نام ہی کریں گے تو وہ شازیہ جی تو کہا کرتی ہیں نا ہمارا نام ہی کافی ہے, تو بس اظہر صدیق لکھ دیجئے گا تو آپ کو سارا کچھ ان کے سارے وی لاگز نظر آ جائیں گے. سنڈے کو بائی دا وے میں نے ہیلمٹ پہن کے آنا ہے اسٹوڈیو میں. میری بدقسمتی کہ میں جگدیش جی کے ساتھ شرط لگا لی تھی کہ پاکستان جیتے گا, جیتے گا بھی
جیتے گا انشاءاللہ، بٹ دیٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کھیل میں کوئی ایک جیتا کرتا ہے ایک ہارا کرتا ہے، انشاءاللہ ہم جیتنے کے لیے آئیں گے. یہ ہمارا پروگرام دیٹ از آن 24th آن سنڈے 9 بجے ہم یہاں سارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، ہمارے پروڈیوسرز موجود ہوں گے بڑی اسکرین کے اوپر، ہمارے اندر ہی ہر ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کا یہ میچ، انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے. آئی تھینک ہمارے اسپانسرز میں یونیورسل ہومز نے ہم کو اسپانسر کر دیا، ناصر شاہ صاحب مارگیجز کے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا. وسیع الدین صاحب آج میرے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ کرکٹ کے حوالے سے اپنا انالیسس پیش کریں گے، سیریز کیپ کے ساتھ منسلک ہیں، ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا چمکتا ستارہ وسیع الدین وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شیراز شفیق جو ہیں مارگیج اکال مارگیجز کے ساتھ، انہوں نے اس 5 گھنٹے کے شو کو سپانسر کیا ہے. اے ٹو زیڈ ڈرائیورز نے بھی ہمیں سپانسر کیا ہے. عارفہ مظفر، میں عارفہ مظفر آپ کے ساتھ ہوں، اور پتہ نہیں کون تھا، مجھے بھول گیا، ابھی میں ابھی بڑھاپا آ گیا آپ سمجھا کریں، اوپر سے غم کی خبریں، کسی ایک طرف سے اچھی خبر نہیں آتی. وہ سنا ہے اپنے پرویز، ہاں کہاں ہے فضل فدود؟ فضل فدود بڑا کنجوس آدمی ہے، وہ تو پیسے بچانے والوں میں سے. مائک کلاچی نے ہمیں اسپانسر کیا ہے، وہ بلکہ ناشتہ حلوہ پوری کا یہاں لے کے آ رہے ہیں، دیٹ از آن 10th، کھا پی لیں گے، اس کے بعد میں تو ہیلمٹ پہن کے آؤں گی، ماجد بھائی براؤن لفافہ لے کے آئیں گے اور ہم سارے اپنے انتظامات کے ساتھ آئیں گے.
ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے، آپ دیکھ لیجیے گا.
انشاءاللہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے بھائی، جیتیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو ایک پالیٹیشین ہے نا ہمارے اسٹیشن کے اوپر، اس کا نام ہے جگدیش گریوال، ایک تو آر ایس ایس سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور جگدیش گریوال، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ جگدیش گریوال کو تو ہم ساروں نے مل کے کمبل کوٹ لگانی. اظہر صدیق صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام.
آپ کو بتائیں کہ میں آپ سے انرجی لیا کرتی ہوتی ہوں کبھی، جب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، یو آر آلویز ویری انرجیٹک پرسن اینڈ واٹ اے اسمائلنگ فیس وٹ یو ہیو. Thank you for being with us.
بہت شکریہ. میں بھی انجوائے کر رہا تھا اور دعائیں ہمارے بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ میچ تو ہم جیتیں گے
اور وہ جیت جائیں. میں کیا، میں بھاوے ایک رن تو جیت جائیے، بس جیت جائیے، کیونکہ ایتھے سارے ساڈے انڈیا دے ہیگے تھے سی سارے کینیڈین، پر سارا ہندوستان بہتا ہونا ہے، وہ پاکستان دی کارفا نے تکا کھان آ جانا ہے، نال میری ٹیم نے ایتھے ہونا ہے.
اسی اتھو دعاواں بھی دواں گے تے اسی اتھے کوشش کراں گے کہ اگر کوئی شامل ہونا پیا
اظہر بھائی ضرور شامل ہویا جی، پلیز اظہر بھائی ضرور، میں تانوں ایئر تے لواں گی وی. اظہر صدیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ صرف گوگل کیجئے گا جناب اظہر صدیق کا نام، ہی از اے سینئر ایڈوکیٹ، اب عمر کے لحاظ سے نہیں، تجربے کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اینڈ ہی ڈز ہیو اے ویری جو ہماری اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. سر جی، میں جب سنتی ہوں، سنا ہے آپ کے وہ شیخ رشید صاحب بھی گم ہو گئے ہیں، یہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 12 کے حوالے سے یہ ایک ریلی شروع ہوئی، یعنی ختم نبوت کی کانفرنس تھی وچ از چینجڈ انٹو اے ریلی ناؤ، کچھ اس کے بارے میں آپ فرمائیں گے، یعنی کیا ہو گیا کہ خطے کی صورتحال اتنی بری ہے اور پاکستان میں اپنی اپنی پئی ہوئی؟
دیکھیں یہ ایک بڑا زبردست آپ نے جو بات اٹھائی ہے، میں اس کاز کے حوالے سے تو سارے ہم ساتھ ہی ہیں، ختم نبوت تو ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے پہ کوئی کمپرومائز بھی ہے یا کوئی دوسری رائے بھی ہے، لیکن ابھی موقع کوئی ایسا نہیں ہے میری سمجھ سے باہر. دیکھیں نا، ایک یا تو کوئی موقع ایسا ہو یا کوئی حالات ایسے ہوتے یا کوئی واقعات ایسے ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب کو باقاعدہ ان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ختم ہونے کے بعد لیکن جو کہ وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کی تھی، سپریم کورٹ نے واپس معاملہ بھیج دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس، تو حکومت نے ڈیٹینشن کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرنا، یہ ہماری عدالتوں نے کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ذرا سوچنا ہے کہ اس وقت بہت برے حالات ہیں پاکستانی اس حوالے سے کہ افغانستان میں جو اس خطے کی صورتحال ہے اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ تو اس موقع اور اس حالات اور واقعات کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی سامنے آیا، پاکستان گرے لسٹ سے نکل نہیں سکتا اور وہ نکالنا بھی نہیں چاہتے، وہ لوگوں کی وجہ یہی ہے. پر ہمارے یہاں بھی پرابلم یہاں یہ ہے کہ جب تک ہماری اپوزیشن اور یہ سارے नेशनल इश्यूज पे इकट्ठे नहीं होते ना, तब यानी फैटम का जो इशू है ये नेशनल इशू है, लेकिन हम एक दूसरे को इल्जाम में एक दूसरे को अपना नीचा दिखाने के लिए, ये नहीं है कि ये अगर पाकिस्तान फैटम से निकलेगा तो इस मुल्क का भला होगा, ये जिस दिन सोचना शुरू कर दिया हमारे अपोजिशन लीडर्स ने और इन्होंने कोई स्टेट्समैनशिप इनके सामने आ गई, और ये कलेक्टिव इशू है, ये कोई यानी देखिये महंगाई वाला इशू अगर सेटल करना है तो कलेक्टिव इशू है। अब ये कहा जाए कि एक गवर्नमेंट मैं आऊंगा तो मैं ठीक कर लूंगा, मेरे पास तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर है, मैं पिछली पूरी तारीख आपको 20-25 साल की गिनवा सकता हूं, 15 साल तो हो गया, मैंने एक पिटीशन जो मैंने लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी उसका एक रिजल्ट मैंने जब लिया, चीनी की कीमतें फिक्स की, तो ये सारे माफियाज इकट्ठे होकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ये वफाकी सब्जेक्ट है, वफाकी सब्जेक्ट सॉरी सूबाई सब्जेक्ट है, वफाकी सब्जेक्ट नहीं है, इल्जाम आप लगा रहे हैं वफाक के ऊपर, लेकिन बात यह है कि कहां सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के बाद तो सारे जो ये छोटे छोटे जितने मसाइल हैं लॉ एंड ऑर्डर के ये सारी चीजें ये तो सूबों के पास जा चुके हैं, ये लेकिन वजह क्या है कि इमरान खान और ये मौजूदा गवर्नमेंट अंडर टारगेट है हर मसाइल के वाले से, बैरूनी दुनिया के वाले से, जिसने आसान तरीके से उन्होंने मामला को सेटल किया वो चीजों को आगे लेकर गए, लेकिन यहाँ पजीराई नहीं मिली, यहाँ कह दिया गया कश्मीर भेज दिया गया, यहाँ कह दिया गया सौदेबाजी की, कौन सी सौदेबाजी की वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये हमने इकट्ठे ना हुए सारे मसले के ऊपर तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होना है, जो कि वजह कि आपके तमाम लीडर सबकी इन सबकी जदादें रहना सहना सारा मुल्क से बाहर है, डिस्टर्ब तो होना है पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, इनका तो ओढ़ना बिछोड़ना सारा, चाहे वो जदादारी खानदान हो, नवाज शरीफ खानदान हो, चौधरी खानदान हो, इन सब की जायदादें सासें पाए, इन्होंने तो आराम से टिकट करानी और मुल्क से बाहर चला जाना है, सोचना यहाँ ये है कि ये मुल्क को सही सिमत पे किसने लाना है, और सिमत पे लाने के लिए और मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के हवाले से मजबूत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का जिस तरह कोशिश की जा रही है मोरल गिराने के हवाले से, अफगानिस्तान के इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद कि जो अमेरिका यहां से चला गया है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, वो यहां अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वो इस खत्ते में अपनी पोजीशन बहाल करें, लेकिन पाकिस्तान एक बिल्कुल एक अलहदा तरीके से अमर्ज हुआ है, चाइना के साथ अगर देखें इस खत्ते में इकट्ठे होकर, टर्की के साथ, ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, तो ये एक ब्लॉक ऐसा बनने जा रहा है जो इस पूरी दुनिया के लिए एक नई जहत का तयन करेगा, डिपेंड ये करता है कि यहाँ इस पे हमारी अपोजिशन या बाकी लोग इकट्ठे होते हैं या नहीं।
जी सर, बड़े प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आज मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ, यानी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक पेज पे नहीं आ रहे हमारे जाती मकासद, मुझे बड़े गम के साथ कहना पड़ता है बढ़ रहा है कि कल आदम तहरीक लब्बैक के जुमे के इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान, यानी हम रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर जो सेंसिटिव इशूज़ हैं उनको बेस बनाते हुए वी आर डिवाइडिंग पीपल, देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होने के ऊपर, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, मगर उसमें यह नहीं कि हम अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। सर, मरियम साहिबा ने जो कहा और नवाज शरीफ साहब आजकल इंग्लैंड में हैं, तो बहुत ही जगहों पे मैंने पढ़ा कि जी उनका केस रिजेक्ट हो गया है, इन इंग्लैंड केस रिजेक्ट हो गया और मरियम नवाज जो हैं उन्होंने ये गलती कर दी। थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि इंग्लैंड की जो ऑपोजिशन है और वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वहां से रवाना किया जाए, हालांकि इंग्लैंड में जितने भी ट्रेटर्स हैं पाकिस्तान के उनको हमेशा खुल के उन्होंने जगह दी, और थोड़ा सा आप ही की जुबानी सुनना चाहती हूँ कि आसमा शिराजी का क्या होगा, मरियम नवाज साहिबा और मैं बल्कि माजरत के साथ शायद आपके नोटिस में भी वो चीज गुजरी हो गई जहां पे पोस्टर बांटे गए थे और मरियम नवाज साहिबा को मादरे मिलत कहा गया था, शायद आपकी नोटिस में से वो गुजरा हो, यानी हो क्या रहा है?
अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने सारी चीजें मेरे सामने रख दी है, मैं कोशिश करूंगा बारी बारी आपके सामने एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर। पहले आम नाजीन के लिए बताता चलें कि हम सिविल और क्रिमिनल लॉ को जरा समझना है। सिविल है जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज के हवाले से है, क्रिमिनल है कि जब आप जुर्म करें, जब आप क्राइम करें तो उसकी दोनों की जुरिसडिक्शन अलहदा होती है। और जो डेफामेशन का लॉ है ना, कि हद के इज्जत का, यानी एक जो बेस बनाई जा रही है मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर लूं इसहाक डार के मौजूदा केस के हवाले से ले लूं, तो ये तो एक सिविल लॉ डेफामेशन के कॉन्टेक्स्ट में था, उसको बुनियाद बनाकर एक मैं बताता चलूं, हमारे यहाँ डेफामेशन एक्ट 2013 जो यहाँ आपके हैं ये ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे यहाँ डेफामेशन का कानून जो ऑर्डिनेंस है 2002 के, उसके सर या पाउनी हम सजाएं नहीं दिलवा सके, ना प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट के हवाले से FIE ने अगर ज्यूरिसडिक्शन शुरू की तो सहाफियों ने कहा हमारा हमारे जनाब आजादी है जारे राय मुतासर होता है, उसमें बाद में आऊंगा। तो ये इतनी कंट्रोवर्सी सामने रही, लेकिन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई, रेहम खान को जुल्फी बुखारी के केस में आपने देखा कि हरजाना बढ़ना पड़ा और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, इसी तरह इस आधार के केस में देखें तो एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि झूठ पूरी दुनिया में नहीं जा रहा में काबिले गिरफ्त है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी जगह है यहाँ ये झूठ बड़े आराम से चलता है। इसी की मिसाल आप छोटी सी ले लें कि आप अंदाजा लगाएं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर किए थे हमजा के और अहमद राउ के, तो वो शहबाज शरीफ के बना दिए गए, तमाम चैनल ने चला दिया कि जनाब शहबाज शरीफ बरी हो गया। वो भाई वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे, एक अकाउंट फ्रीज किए थे इंक्वायरी के हवाले से, इंक्वायरी फौजदारी खत्म नहीं हुई और बड़ी इंक्वायरियां वहां पर चल रही हैं, और ये मामला जब सामने आया तो मैंने कोशिश करके यहाँ पैमरा में शयान अली, आपको पता है 16 साल का बच्चा है, लंदन के अंदर उसकी उससे कंप्लेंट दायर की और वहां वो काबिले गिरफ्त आए और एक ने तो आकर गलती एडमिट कर ली मंसूर अली खान ने कि जनाब मैंने बाकियों ने चलाया था तो मैंने भी चला दिया, लेकिन बाकी कमरान शाह या जियो के हवाले से भी लोग आए नहीं है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, जो बड़ी अहम इशू है वो मैं आगे हम जा रहे हैं, कुछ दोस्तों ने इंग्लैंड में कनाडा में रابطہ किया और डेफामेशन के केसेस, पहले मैं सेट बता दूं वो मरियम नवाज साहिबा के अगेंस्ट, मरियम नवाज साहिबा ने जो DGISI जनरल फैज अमीद और पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसरान के ऊपर इल्जाम लगाया, बल्कि ट्रॉल चलाए और वो फेक चलाया गया कर्नल लियाकत के बारे में, या बाकी लोगों कोई है नहीं ना उनका लेना, मैं जानता हूं कर्नल लियाकत को बड़ी अच्छी तरह से, मैं मेरी कई दफा उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो जो चीजें सारी बनाकर और जनरल फैज अमीद के बारे में जो बातें की कि जनाब उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है, केसों में सजाएं हो गई हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है आरपा साहब एक आम आदमी के लिए, ये अब बात फौजदारी जुराइम के, जो नैब है वो फौजदारी जुर्म है और उसके तहत आप सजाएं आपको जो होनी है या आपने बरी होना है अदालतों से होना है, और उसके लिए किसी की खबर देने और देने के हवाले से नहीं है। मरियम नवाज जब पनामा का केस आया था आपको पता है कि सुप्रीम मामला चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2017 के अंदर और तकरीबन आप 166 दिन के करीब की हेयरिंग हुई थी और उसके बाद मामला भिजवा दिया GIT को, पूछा गया कि डिटेल ले आए, एसेट्स की कोई डिटेल नहीं थी इनके पास नेवल फील्ड के हवाले से ना, और इन्होंने वो पेश कर दिया कतरी खत पेश कर दिया, फिर वो खच्चरों पे जो मशीनरी थी सऊदीया से दुबई से सऊदीया ट्रांसफर की, कोई मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं था, मामला फिर भिजवाया गया कि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मामला भिजवा दिया गया GIT में, GIT ने 60 दिन लगाया, ये सारे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत नहीं था इनके पास का, यहां जो बात कर रहे हैं ना कि फौज का प्रेशर था या जनरल फैज अमीद कि भाई आपसे पूछ रहे हैं कि तफसीलात लेके आए ओनरशिप लेकर आए, नहीं थी 60 दिनों के अंदर, कुछ थी नहीं। और वहां पर नवाज शरीफ के हवाले से बात आई कि उन्होंने अपनी सैलरी अपनी बेटे की जो कंपनी ऑफशोर कंपनी थी दुबई के अंदर उसमें से तनख्वाह लेते थे, वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, तो ये मिस डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए और डिस्क्वालीफाई ता उम्र हुए, फिर नजरसानी की तरखास्त भी खारिज होगी। जब मामला GIT ने सामने रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 6 दिन की समाअत की, फिर पूछा ले आए तफसीलात बता दें सारा कुछ सबूत, काम खत्म हो जाता, नहीं था इनके पास, वो मामला फिर भिजवाया नैब के पास, नैब ने अपनी इंक्वायरी की, बुलाते रहे इनके पास था कुछ नहीं, फिर नैब का ट्रायल शुरू हुआ और नैब के ट्रायल के अंदर अल अजीजिया के अंदर नवाज शरीफ को 10 साल की सजा और एक में 5 साल की सजा हुई, मरियम को 7 साल की सजा हुई, सफदरवान को 1 साल की सजा हुई, अब ये इसमें सजाएं होंगी फौजदारी कानून के तहत, जुर्माने भी हुए, ये सबूत आज तक नहीं दे सके। अब यहां पूछा जाए कि किसी फौजी अफसर ने वो अरशद मलिक की अपना वीडियो का ड्रामा बना के या शौकत सिद्दीकी के जो जज थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से बातें करने की कोशिश की, सवाल तो ये पूछा जा रहा है क्या मनी ट्रेल दे, भाई उनका क्या ताल्लुक अरशद मलिक ने तो फायदा दे दिया, आपको सजा कम सुनाई, सजा तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कोई सबूत था नहीं और वो वीडियो के हवाले से भी आज तक फोरेंसिक नहीं हो सका, आज तक किसी ट्रायल के अंदर वो जा नहीं सकी, तो सिर्फ खाली बातें हैं, हवाई बातें हैं। अब ये हवाई बातें जो सारी उन्होंने की हैं और ये सारे मीडिया चैनल ने चलाई हैं, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, किसके ऊपर मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रब्ता किया, मैं डेफोमेशन का केस तैयार कर रहा हूं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, और जो जिन चैनलों ने ये बात चलाई है उनको डेफोमेशन का नोटिस देके और पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले दिनों में ये केसेस किए जाएंगे। ये है पहला सेट। अब दूसरा आते हैं आसमान शिराजी के हवाले। आसमान शिराजी क्या अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर देखा जाए उनका, वो लोग कहते हैं कि वो पेड है, पता नहीं पेड है या नहीं, लेकिन लोगों का एक ओपिनियन ये है कि वो उनका एजेंडा उनका बैग वो कैरी करती है, और सारे अगर तो उठाकर देख ले उनके कॉलम तो उनके कॉलम से झलक नजर आती है। जब वो लंदन से जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो उस जहाज में थी, गालबन बिजनेस क्लास में बैठी हुई थी और वो कॉलम का पूछा गया, फिर सर सर करके जवाब देती थी, ये रिकॉर्ड की चीज है ना मौजूद। अब उन्होंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा और बड़ा वाजे तौर पर एट्रीब्यूट किया इमरान खान साहब की बीवी के हवाले से, और वो लफ्ज इस्तेमाल जादू टोना के हवाले यानी टॉन्ट करने के हवाले से ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अब ये लफ्ज काबिले गिरफ्त है, दो तरह से काबिले गिरफ्त है। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 कहता है राइट टू स्पीक है आपके पास, लेकिन राइडर लगा हुआ है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जहां तक बात है तो वो मोरालिटी की बात है, डिसेंसी की बात है, आप नहीं बात कर सकते किसी के जात के बारे में। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, आपको ये इजाजत नहीं है। और यही डेफामेशन का कानून आर्टिकल 19 को सामने रखते हुए अगर इंग्लैंड का भी उठाकर देख ले डेफामेशन एक्ट 2013, उसमें यही बात है कि उसके राइट की, उसकी प्राइवेसी की, उसकी रिप्यूट की। आपने ये कॉलम सारा लिख के बाकायदा ट्वीट करके आपने हतक की है। आपने देखे ना को, ना तो वो खुद आती है ना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो आपका उनसे ये कहने का मकसद क्या है? और ये भी आप ऐसी चीज आप लिखे को जिसको साबित करना है, इसको आप साबित करना पड़ेगा ना, जो उन्होंने ये बातें की उनको साबित करना होगा, साबित करने में उनके पास है कुछ नहीं है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में भी उन पे भी अगेंस्ट या तीन तरह से कार्रवाई के चांसेस है। लोगों ने रब्ता किया, मुझसे पूछा है, एक तो इन लोगों के इसके खिलाफ इस्तगासे दायर हो सकते हैं 4499 पाकिस्तान पीनल कोड 500, जिसमें 2 साल तक सजा है कि मुख्तलिफ अदालतों में जाकर इनके खिलाफ इस्तगासे दायर हो जाए। फिर डेफोमेशन के केसेस इनके अगेंस्ट, और वो पूरे दुनिया के अंदर भी, जो कि बीबीसी उर्दू ने ये किया है, तो बीबीसी लंदन से बेसिकली उनका हेड ऑफिस है, तो उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड ने कॉलम बाकायदा लेकर उसका एडिटोरियल साइट देखी नहीं, चीजें सारी देखी नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये भी डेफोमेशन का एक केस बनता है। फौजदारी के अलावा दीवानी भी, जैसे मरियम, जैसे रिहाम खान ने सब माफी मांगी, इसी तरह अपना एक और चैनल ने इसहाक डार से माफी मांगी
जी,
उनका तो आसमान शिराजी को या तो जुर्माना देंगी या माफी मांगेंगी।
सर आसमान शिराजी तो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इस डेफामेशन का जो लॉ है इसकी इतनी पासदारी नहीं होती, वहां तो कोई भी मिट्टी डाल सकता है किसी पे, मगर मेरा ख्याल है बीबीसी को लायबल ठहराया जा सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, नोटिस बाकायदा दिए जाएंगे इस वाले को, एडिटोरियल साइट था उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये सारा देखना था कि इस तरह का कॉलम जो है जो डेफामेशन में है लाइबल भी आ जाए, स्लैंडर भी आ जाए, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना चाहें तो वो कॉलम जो है ना। और फिर दोबारा है कि उन्होंने एक और ट्वीट किया, मैंने वो ट्वीट भी संभाल लिया बीबीसी उर्दू के हवाले से, वो भी हम देखेंगे। और बाकायदा अब देखिए कम अज कम जो है ना इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान में तो कमजोर कानून है लेकिन इंग्लैंड के अंदर बाकायदा ये नोटिस के बाद सिविल सूट की तरफ जाया जाएगा और देखा जाएगा। वो ठीक है, वहां देखा जाता है, ग्रेडिंग की जाती है कि ज्यादा कम है, ज्यादा है, एक्सट्रीम है या बहुत ही वर्स है, वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। और ये हमें रोकना है, हमें आजादी है जाहिर राय को, हमने मादर पितर आजादी जो बना ली है वो नहीं है, राइटर है क्लासिफिक अपना यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्लासिफाइड राइट है, उससे आगे आप जा नहीं सकते हैं। और आपका जाति ग्रज बड़ा वाजे तौर पर है। और एक और जो काम उन्होंने किया ना आसमान शराजी ने, अहमद वकास गुराया जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, जो हमारे दीन के बारे में हमारे मजहब के बारे में बातें करती है, उनसे भी पीए उन्होंने बढ़ा ली है, उनके बाकायदा शो में जाकर अपने आप को क्या वो शो करना चाहती हैं स्टेज के ऊपर। और ये जो एक पोर्ट्रे कर रही है ना, एक चीज को पोर्ट्रे करना चाह रही है कि आजादी जाहिर है, आजादी जाहिर है आपका लिमिटेड है, आपका मादर पितर आजादी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। ये जो है ना ये डिफाइन होना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब कुछ इन लोगों ने इस तरह की बातें की तो FIA ने ज्यूरिसडिक्शन ली, FIA ज्यूरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चला गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलात में रोक दिया। फिर आपको पता है बड़ी प्लानिंग के साथ और चंद साहबी हैं, उन्होंने अब उसमें हामिद मीर के भाई भी हैं, वो बाकायदा आप एक दरखास्त ले गए जस्टिस काजी फायजी साहब के पास, उनके अदालत में ले गए, अपनी मर्जी से बैठ के निजाम बनाया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, उन्होंने कहा खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। उस बेंच के अंदर भी बाकायदा आजादी है इजहार राय के हवाले से बाकायदा बन चुका है कि अगर सहाफियों के मसाइल है वो हल करने हैं, लेकिन आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। हमने यहाँ मादर पितर आजादी का जो कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जिसका मर्जी चाहे जो मर्जी बात कर ले, वो इजाजत ना आईने पाकिस्तान हमारा आर्टिकल 19 नहीं देता। आर्टिकल 14 जो है रेपुटेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, आप उसको तोड़ रहे हैं, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप हरेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इनको रोकना है और ये जरूरी है। हमारा जो आप एक और चीज याद रखें ना, इन्हीं चीजों के अगेंस्ट जब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जब बन रहा था तो ये सारे रूट के बाहर आ गए थे, इसलिए कि ये इस तरह की बदजुबानी चाहते थे कि उनको आजादी मिली रखे, जिसका मर्जी पैंट उतार दे, जो मर्जी बात कर ले, और ये मौका आ गया है। और हाँ, एक आपको बात और याद, जब हमारा प्रोग्राम आपके साथ हुआ था मेरा जिसम मेरी मर्जी औरत मार्च के कॉन्टेक्स्ट में, ये अंदर से ये सारे लोग जो सो कॉल्ड लिबरल है या इकट्ठे हैं, ये इस तरह की आजादी चाहते हैं। बेरारवी के हवाले से मैं LGBTQ के हवाले से मैं उन सब लोगों को जो कि जानता हूं, मैं सारे मामले को बड़ी बारीकी से देख रहा हूं कि वो इस तरह की, यानी वो चाहते हैं कि मैं जो मर्जी करूं, मैं जिस तरह मर्जी करूं, मुझे कोई रोक टोक ना हो, कोई पूछगिछ ना हो। हालांकि आपके फौजदारी जराएं पाकिस्तान पीनल कोड में दिए हैं, डिफरेंट लॉ में दिए हुए हैं, आपको उनके तहत जिंदगी गुजारनी है, पाकिस्तान में अगर रहना है तो उसकी पासदारी करनी है, ये वो चाह रहे हैं कि वो हमें पूछा ना जाए और जो हम चाहें, जो मर्जी हम चाहें वो कर ले। पूरी दुनिया में यह कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके कैनेडा में ही ऐसे हालात और वाकया नहीं है कि इस तरह की बातें आप कर सके।
सर मैंने आपने सारी बातचीत की, मियां साहब आजकल अमेरिका में हैं और सोशल मीडिया की हम कोई न्यूज़ वैसे प्ले नहीं करते जो अक्सर लोग फेक न्यूज़ उसमें निकल आया करती है, फिर बाद में हमें खुद से शर्मिंदगी हुआ करती है। मगर मियां साहब के बारे में मेरा बहुत प्यारा एक बेटा है, उसने कहा है कि मियां साहब की शादी के बारे में पूछे, इट्स अ फेक न्यूज़, आई डोंट थिंक सो ही कैन मैरी, डोंट बिलीव इन, और अगर की भी है शादी तो उनका हक है, शरई हक उनका बनता है, एक आदमी की बीवी मर गई है वो शादी कर सकता है, कर ले, उसका ज़ाती मामला है, मगर आई डाउट इट वेरी मच जुनेद, आई डाउट इट। बट ये शुनीद जरूर है कि उनका केस रिजेक्ट हो गया और इंग्लैंड की जो ऑपोजिशन है वो चाहती है कि मियां साहब अब इंग्लैंड को छोड़ दें, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? और ये आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से ये पड़ती है खबर, तो इसकी हकीकत क्या है?
देखिए आपको अगर याद होगा नवाज शरीफ साहब जो है ना, नवाज शरीफ साहब का लफ्ज मैं कह दूं तो लोग एतराज उठाते हैं कि भी आप लफ्ज ये साहब क्यों कहते हैं, लेकिन चलें थोड़ी बहुत इज्जत अगर दे भी दी जाए। उनको पाकिस्तान में अदालतों ने दो किस्मों में सजाएं दी हुई है, एक 10 साल और एक सजा याफ्ता आदमी पाकिस्तान से बहाना करके ड्रामा करके गया कि मुझे इलाज कराने के लिए भेजा जाए, 4-8 हफ्ते की जमानत मिली, वो मनसूख हो चुकी है, इश्तिहारी करार दे चुका है मुख्तलिफ अदालतों ने, 4 हफ्ते की इजाजत मिली, इनको पीरियोडिक रिपोर्ट आने को कहा। ये एडमिटेड बात है कि अस्पतालों में तो जाते रहे, टेस्ट उसको कराते रहे, लेकिन किसी अस्पताल में जाकर ना इन्होंने ऑपरेशन कराया, और ये धोखा देते रहे हैं पूरे सिस्टम को। और वहां अब जो मामला जो है ना, जहां तक मैं पहले एक हिस्से में, आपको याद होगा पिछले दिन उन्होंने हमदुल्ला से मुलाकात की थी, मैं बाकी जो जो अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन जिनसे पींगे बढ़ा रहे हैं वो बैरूनी एजेंट है, और उन लोगों से ताल्लुकात इनके ज्यादा है, तो उनका उनकी गेम वो चला रहे हैं, लेकिन इतना नहीं अंदाजा कि पाकिस्तान के अंदर बैठे भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में भी डिमांड कर रहे हैं कि इनको पाकिस्तान में रहिए, पीरियोडिक रिपोर्ट मांगने का कहा था लाहौर हाईकोर्ट के, वहां रिपोर्ट देने दिए डॉक्टर डेविड लॉरेंस का, देते रहे, वो घर का डॉक्टर है जो मर्जी बात करता रहे, लेकिन किसी अस्पताल में इलाज नहीं हो सका। अब उनके जो वीजा चूंकि एक्सटेंड नहीं हुआ, 6-6 महीने बाद आपको जाना होता है, इतने से रह रहे थे, कोविड की वजह से एडवांटेज मिल गया था, अब उनका जो कि वीजा रिजेक्ट हुआ, वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ, उन्होंने फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में की हुई है अपील, वहां मेडिकल ग्राउंड के अलावा उन्हें कोई चांस नहीं है, तो मेडिकल ग्राउंड का केस वो बना नहीं सके। लेकिन साथ साथ एक जो काम किया है, शयान अली 16 साल का बच्चा है लंदन में, उसने बाकायदा 3 काम किए, एक तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कंप्लेंट दायर की इस हवाले से इनका वीजा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इन्हें बाहर भेजना चाहिए, जो पैसे पाकिस्तानी का लूट मार कर रहे हैं उसके बारे में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसने नेशनल क्राइम एजेंसी को भी लिखा, उन्होंने भी कहा हम सारे मामले को देख रहे हैं, साथ साथ उन्होंने एक बाकायदा एक पिटीशन डाल दी यूके की पार्लियामेंट के ऊपर को 32-33 हजार के करीब लोगों ने साइन कर दिया, अगर 1 लाख तक साइन हो जाते हैं और आपके चैनल के तौर से मैं कहूंगा कि जो भी इंग्लैंड में दोस्त सारे आप बैठे हैं, शयान अली की उस पिटीशन को साइन करें और बाका ताकि वो 1 लाख तक पहुंची और पार्लियामेंट के अंदर हुए। लेकिन साथ साथ शयान अली ने एक और काम किया, मैं रबते में उन्होंने अपोजिशन लीडरों से भी रबते शुरू कर दिए हुए और उन पर भी ये कह रहे हैं कि ये एक बाकायदा
ब्लेस यू जी
बाकायदा एक कन्विक्टेड आदमी है, सजा याफ्ता आदमी है, इनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जदादें जितनी बताई हैं इनके पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं है। तो ऐसे आदमी को जो क्रिमिनल है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, इसको इस मुल्क से निकालना ये हैवन नहीं है। ये टैग ये जो बुनियादी तौर पर हमने बनाया हुआ ना, यानी इंग्लैंड के अंदर, कि यहाँ ये उनके लिए अपना सेफ हैवन बन चुके हैं।
सर ये हेवन तो है ही, देखिए अल्ताफ साहब भी वहीं पे बैठे हुए हैं और वहां से बैठ के नफरत अमेज तकरीरें भी करते रहे। मैं शायान अली से इम्प्रेस्ड भी हूं और हैरान भी हूं कि एक यंग बच्चा, बट इसके पीछे डेफिनेटली कोई इदारे होंगे या कोई जरूर होगा, कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा पॉलिटिकल नो हाउ इस हद तक कैसे हो सकती है और स्ट्रांग पुल्स कैसे हो सकती हैं उसकी।
मैं बता देता हूँ, उसका ताल्लुक जो है ना उनके दादा में, देखिए मेरी दोस्ती है उनसे, आप कह सकते हैं कि उसको पॉलिश करने में, उसको थोड़ा सा निखार लाने में हम लोगों का हाथ है, उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग अगर देखा जाए, कानूनी ट्रेनिंग देखा जाए, लेकिन उस बच्चे में गट्स इतने हैं। यानी मैं तो उसके साथ अपने प्रोग्राम में अक्सर प्रोग्राम मैं करता रहता हूँ, उसके दादा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे जब बात हुई, जब मैंने बच्चे को उसको देखा कि जब आबद अली शेर से मुठभेड़ उसकी हुई और वो खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद मैंने देखा नहीं इस बच्चे में ऐसे है कि ये पॉलिटिकल लीडर बड़ा बन, और मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं आपको कि आने वाले दौर का बहुत बड़ा लीडर होगा। उसके पीछे किसी इदारे या इस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि मेरा तो ब्राह रास्त उनसे रबता है, मैं और उनकी वालदा से, उनके वालिद से मैं हर वक्त रबते में रहता हूँ, और अक्सर मेरा दादा से तकरीबन दिन में मेरी 2-3 दफा बात होती है, मैसेज एक्सचेंज होते हैं। तो उसकी ग्रूमिंग जो है ना उसके बेसिकली दादा कर रहे हैं और उसकी वालदा कर रही है, वालदा, और वो एक जज्बा रखता है, वो एक
बहुत शुक्रिया। तो शायान अली के बुनियादी तौर पे इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। मैं सर एक चीज के ऊपर आपसे रोशनी लेना चाहती हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से एक सहाफी ने बड़ा, मैंने वैसे कभी कम ही किसी सहाफी को इतना ब्लंट क्वेश्चन करते हुए देखा, कोर्ट से जब ये निकलती हैं, तो वो मोहतरमा बेनजीर वाले केस के बारे में जिसमें उनको रिलीफ दिया गया था और के शौकत सदीकी साहब को बुलाया जाए, तो एक सहाफी बड़ा ही कोई जीदार गुर्दे वाला बंदा था, आई विश के आई कैन हैव दिस जर्नलिस्ट नंबर, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से फौरी तौर पे सवाल कर दिया कि आपके बेटे के जो ससुर हैं उनका ताल्लुक भी कुछ इसी तरह का केस था, आप लोगों की गवर्नमेंट थी, उनको रिलीफ मिल गया था। तो मोहतरमा मरियम नवाज जो कि सवालों के जवाब और कुछ कहने के लिए तैयार थी, उन्होंने कहा वो केस बंद हो गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, और फौरन मुड़ी और आगे चलेंगी। उसका सवाल ये था कि सेनेटर सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम के मामले में जो छूट मिल गई थी, एंड ही इज योर, आपके बेटे का ससुर भी है, अमीर लोगों की आपको पता है शादियां भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर होती हैं, तो इसके बारे में आप कुछ फरमाएंगे, कुछ हमें उस केस के बारे में बैकग्राउंड देंगे, यानी जो उनके काम की बात होती है उसका वो जवाब देती हैं, जो उनके काम से मुतल्लिक नहीं होती, शी नोज हाउ टू यू नो जस्ट इग्नोर दैट क्वेश्चन।
आप सब देखें, एक बात तो बड़ी वाजे है, मरियम नवाज ने सोशल मीडिया में जब वजीर आजम थे इनके अब्बा गहने इनके वाले साहब उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पे रखा था, साफियों से इनकी दोस्तियां ताल्लुक हो गए थे, इन्होंने ग्रुप बनाए हुए इनके, और वो ये बकायदा डिक्टेशन देती है, आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि सवाल
वो उस सवाल बकायदा वो कहती हैं कि उसको कहो कि वो सवाल करे, उसको कहो कि वो और मरियम औरंगजेब इज प्लेइंग अ वेरी
मरियम औरंगजेब है, हिना है, अपना मरियम खुद है, जो कि मेरी जर्नलिस्ट में आई एम नोन टू बी हाफ जर्नलिस्ट, जो कि मैं साफी आधा साफी कहलाता हूं, तो मुझे तो पता है इनका ये जिस हवाले से है। अब जो बड़ी मजेदार बात है ना, वो खुद लिख के फंस गई हैं, वो जिक्र कर रही हैं आसफ अली जरदारी का, जिसमें मलिक कयूम को फोन किया था इनके चचा हजूर ने, सैफुर रहमान ने जब केस बनाया था उस कॉन्टेक्स्ट में, सजा देने के कॉन्टेक्स्ट में। कमाल की बात यह है कि वो जो वीडियो लीक होके जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जब उन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं किया, इस वीडियो का दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है, और वो बाकायदा जब ये मलिक अरशद वाली वीडियो सामने आई तो यहाँ अपना फुल बेंच के सामने बाकायदा पटिशन इन्होंने खुद फाइल करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, जेन्युइननेस चेक करने के लिए, फिर क्या जो बातें की हैं वो सच भी हैं, उसके लिए मेथड एक दिया। वो मेथड की आपको याद होगा, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दी और वो दरखास्त जब बहस करते हुए एक भी आर्गूमेंट नहीं लिया, क्योंकि वजह है कि वो बेस बनती नहीं है, आपको वीडियो को जस्टिफाई करना है। जहां तक शौकत सिद्दीकी का है, शौकत सिद्दीकी ने एक तकरीर की, वो भी किस जगह है, और शौकत सिद्दीकी को निकाल दिया गया है, उठाकर बाहर फेंक दिया गया कि वहां बैठ गया। और शौकत सिद्दीकी का ताल्लुक आपको पता है इरफान सिद्दीकी है, वो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा जो लेकर, जो बैरूनी एजेंडा है टोटल, वो लेकर वो चल रहे थे। और वहां इसलिए वो भाग गई कि वो उनके समधी जो है सैफुर रहमान का जिक्र आ गया और वो वीडियो ही का जिक्र आया, तो उनके पास इसका जवाब लिख तो दिया उनके वकील ने वहां पर, लेकिन वो उस चीज को लिखने की वजह से वो बड़ी बुरी तरह फंस गई। उनके पास इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, यानी ये नहीं है थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा हप हप थू थू कि आप ये कहे गुड कॉप और बैड कॉप का कॉन्सेप्ट लेकर चले और कहे। और दूसरा देखे ना, जो फैसले इनकी अपनी फेवर में आ जाए तो वो अच्छे है, जो इनकी मर्जी के फैसले ले आए उनको तो ये मानते नहीं है। और इन्हीं की पार्टी के अंदर आपको याद होगा जब पनामा का केस आया तो निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज तौहीन अदालत में इनको सजाएं हुई और इनको बाकायदा इनकी पार्लियामेंट में इनकी रुकनियत से, सेनेटर अगर है, अगर MNA है तो वो छोड़ना पड़ी। उसके बाद आगे मैंने कई पटिशन यहां दायर की, मैंने बाकायदा नवाज शरीफ अगर आप उठाकर देख लें, नवाज शरीफ आपके सामने भागा हुआ है, भगौड़ा है, एब्सकॉन्डर है, वो जब दिल चाहता है तकरीर शुरू कर देता है। उससे पहले अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगवाई थी कि वो भगौड़ा है, जब दिल चाहता है पाकिस्तान में
उनकी तकरीरें तो बंद हो गई और वो रोक दिया गया था। बहुत शुक्रिया समीन, मैं जनाब आपको बहुत शुक्रिया, जनाब मोहम्मद अजीज सिद्दीक साहब, लेट नाइट आप मेरे साथ शामिल हुए। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो इनके वीलॉग्स होते हैं। बाय द वे, आपके वीलॉग्स की कैप्शन कौन तैयार करता है? बहुत कमाल की।
एक्चुअली सोशल मीडिया टीम है मैस यूज के नाम से, और अब तो क्रेडिट जाता है आपको भी, आप तो हमेशा जिक्र करती रहती हैं और लोग बहुत देख के इनपुट देखिए। 2 बजे हैं वो समझने वाली बात है। मैं अब आजकल चैनल्स में कम इसलिए जाता हूं कि चैनल पे टाइम बड़ा लगता है और आप सही बात बता नहीं सकते। सोशल मीडिया के इस दौर में अब आकर हालात और वाकयात ऐसे हो गए हैं कि सच नहीं बताया जाता, तो मजबूरन बजाय मैं टेलीफोन लेने के लिए, तो मैं आपको पता है कि पूरी तहकीक के साथ वो पूरी एक टीम रहे, और मैं अगर देखा जाए वकील हूँ और काफी पैसे लेता हूँ मैं, यानी ये कहा जाए कि
चले सर जी मुझे तो इंशाल्लाह अब्बल तो जरूरत पड़नी नहीं, पर मुझे इतना पता है एक वकील मेरा अपना है जरूर, जनाब मोहम्मद अजीज सिद्दीक साहब, पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अजर साहब आपका बहुत शुक्रिया लेट नाइट हमारे साथ शामिल होने का, एंड आई विश के लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करते कर देना तो आई थिंक लोग किसी एक काम की तरफ लग जाएंगे, ये इबहाम से लोगों को निकाल के, और एट द एंड ऑफ द डे हम अशखास के ऊपर तो मट्टी डाल देंगे या उनके ऊपर तो गर्द उड़ा देंगे उनकी, मगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तबाह कर रहे हैं।
ये बजा फरमाया आपने, गलत नहीं कहा आपने, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है आपने। और पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखिए आरफा साहब, एक मैं आज से 20 साल पहले चले जाऊं तो मुझे अच्छी ज्यादा याद है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी, साइकिल भी बड़ी मुश्किल से उससे थोड़ा सा पहले चले जाए तो उन्होंने लेकर दी थी।
सही।
हमारे यहाँ बड़ी तेजी के साथ चीजें आई हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है,
कमाल है सर, गाड़ियां कंट्रोल नहीं, सड़कें रश नहीं बर्दाश्त कर पा रही,
ये देखे ना, और वजह क्या है। लेकिन असल जो बात समझने वाली है ना, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, हम बहुत तेजी से आगे चले गए हैं, लेकिन जो असल जो इशू है ना, जो किसी हुक्मरान ने सोचा नहीं कि आम आदमी के मसाइल के, मिसाल के तौर पर आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। आपने फ्री ट्रेड का प्रिंसिपल दे दिया, फ्री इकोनॉमी का प्रिंसिपल दे दिया, और यानी मैंने आप अंदाजा लगाएं जब से पाकिस्तान बना है चीनी की कीमत कभी फिक्स नहीं हुई, 15 साल लगे मुख्तलिफ पटिशनों से, ये अभी सितंबर में जाकर चीनी की कीमतें फिक्स करवाई, अभी गंदम की कीमतों की तरफ आ रहे हैं, फार्मर बेचारा फसलें उगाता है, मिडल मैन जो टैक्स भी नहीं देता वो लेके अपने पास बैठता है, उसको होल्ड कर लेता है और जाती है तो बुरा हाल हो जाता है। ये जब तक मैकेनिज्म सारे इकट्ठे बैठकर नहीं बनेंगे ये हल नहीं हो सकते। और याद रखिएगा कोई नहीं चाहता, कोई ये
प्रॉब्लम का सलूशन कोई नहीं चाहता।
अगर आवाम खुशहाल हो जाएगी तो अपनी मर्जी से वोट देगी, वो मसाइल नहीं रह जाएंगे, कोई बात ही नहीं सुनेगा इनकी। और इसीलिए ब्लैकमेल करने के लिए हालात ऐसे बनाते हैं कि आवाम को।
सर मुझे आपसे एक मिनट के में जवाब चाहिए होगा क्योंकि हमने आगे की तरफ बढ़ना है। इट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, लिविंग इन दिस सिस्टम, हम उस गवर्नमेंट की अच्छी चीजों को सराहते हैं, बट एक चीज जो मुझे इस गवर्नमेंट के बीच में, और मैं तो वो उन लोगों में से थी जो चेंज की बड़ी कायल रही हमेशा, मगर अगर मैं इस गवर्नमेंट की कैबिनेट की तरफ देखती हूं तो मुझे एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो इस गवर्नमेंट की अपनी चॉइस थी या इन्होंने होमवर्क करने के बाद अपने शैडो मिनिस्टर्स को रखने के बाद वो चीज तैयार की हुई थी और उनकी उनकी तजुर्बात का फायदा उठाते हुए कोई तब्दीली ला सकते थे। जितने बंदे हैं वो सारे के सारे या तो मुस्लिम लीग पिछली के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या पिछली पार्टियों से ही वो अपनी वफादारियां बदलते 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 यहां तक आ गए। फवाद साहब को भी 3 दफा मिनिस्टर एक जगह का बनाया, एक जगह से हटाया, दूसरी जगह का, दूसरी जगह से हटाया, तीसरी जगह का, तीसरी जगह से हटाया, फिर चौथी जगह का लगा दिया। और किस दिल गुर्दे के साथ वो कहते हैं पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क किया, हालांकि वही तो अरकान थे जो पिछली हुकूमतों से आज की हुकूमत में भी आके बैठ गए। यानी उन्होंने हर जगह पे वक्त और हालात के मुताबिक अपनी वफादारियों को बेचा था। इस गवर्नमेंट ने कोई टैलेंटेड बंदा अपना लेके नहीं आई थी, इसके बारे में क्विक आंसर चाहिए मुझे आपसे।
अच्छा देखिए, आपने बात बड़ी जबरदस्त कही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 35% ऐसे लोग हैं जो पुराने गवर्नमेंट्स के आए हैं, इनके अपने जो कई चेहरे ऐसे हैं, मैं वो नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कई है यानी अगर आप आते जाएं अपना असद उमर में आ जाएं, उनका पुरानी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मुराद से मुराद के बारे में आ जाएं, पुरानी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, शफकत महमूद आ जाएं, इन कई नाम ऐसे हैं जो मैं गिनवा सकता हूं। लेकिन जो असल बात है, जो हम समझने की बात नहीं कर रहे, कि इमरान खान खुद तो साफ आदमी है, लेकिन जो साथ आपने ये बंदे लगाए हैं वो सारे वही लोग हैं, वो रवायती सियासतदान हैं, उन्होंने अपने लोगों के काम करवाने हैं, जायज ना जायज, वो चाहे चाहे कोई भी आदमी हो, उसने नौकरियां दिलवानी है, उसने पुलिस से काम लेना है, रिश्वतों के बाजार गर्म है, करप्शन रुक नहीं सकी। फिर इमरान की च्वाइस भी अगर देखे ना, पंजाब का जो वजीर आला लगाया है
अपने तौर
पर कमजोर आदमी ऐसा चुना के जो बेहतर कर सके, लेकिन वो बैड चॉइस।
व्हाट इज द रीजन, इज बेगम साहिबा लाइक हिम या क्या प्रॉब्लम है कि बुज़दार साहब अब फिर वो किसी और स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है? ये तो एक वीक पॉइंट है ना इस कमेंट का।
मैंने देखिए ना, मैंने लिकर के केस में इनके अगेंस्ट जो शराब का लाइसेंस इन्होंने दिया, फिर हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस, मैंने नैब में इनके खिलाफ कंप्लेंटें दायर की है, मुझे इनकी हिस्ट्री पता है। हमारे एक दोस्त हैं जमील गुजर, जिनका नाम आप पहले सुनते रही हैं, वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था जब ये मुलाकात के लिए लेकर के, एक मुलाकात रखवाई, इसकी जेब खाली करा दी उस्मान बुज़दार की, वहां जाकर रोए पीटे के मेरे से बंद, मेरे घर इलाके में बिजली नहीं है, जाने के जब वापस निकलने गए मेरे पास किराया नहीं है, मुझे पैसे दे दें, यानी पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया। इमरान को मैं क्या कह सकता हूँ, हिप्नोटाइज किया गया, या कुछ मैं ऐसा लफ्ज नहीं कहना चाहता, इमरान ने इसको चूज इसलिए किया कि गरीब आदमी है ये, आके आम बंदे के मसाइल हल करेगा और कोशिश करेगा, और अभी भी पिक्चर पोर्ट्रे यही की जा रही है, उस तक यही बताया जा रहा है। लेकिन उसने दो बजे में समझ, एक तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला मैं कैसे बंदे से कराना चाहता हूँ कि जो जो बिल्कुल छोटी सी जगह से आया है, जो बैठ के बहुत बड़ा काम, इमरान का शायद विजडम इस
गदर है सर, गदर है, वेरी वेरी सैड। मगर मैं आपसे यहीं पे एक चीज कहते हुए, दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस गवर्नमेंट इन पाकिस्तान के कोविड आ गया, और कोविड ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। टोरंटो में जो हमारे मेयर हैं, हमारे जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, जब आए थे, और अगर आप शुरू के दिनों में याद करें तो वो टोरंटो के बजट को बैलेंस करना चाहते थे, डेफिसिट से निकालना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इकदाम शुरू किए, बहुत सारी चीजों के ऊपर कट्स आए थे कि हम मस्पत में आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और लेने के देने पड़े रहे, और आज इन्फ्लेशन रेट अगर आप टोरंटो का, कनाडा का देख लें तो दिस इज अनबिलीवेबल, इट इज अलार्मिंग। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में भी मसाइल उसी हिसाब से हैं। एनीवेज सर, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। जनाब मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान, एंड इनके वीलॉग्स यूट्यूब पे आप देखते भी हैं। सर थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कोशिश करता हूँ कि आपके साथ थोड़ा बहुत वक्त जरूर गुजरे, क्योंकि आप
सर आप बेहतरीन हैं। आपका शुक्रिया कि आप टाइम देते हैं हमें। आई लव यू, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जनाब अजहर साहब हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। किंग वेस्ट स्माइल ओंटेरियो का भी जिक्र करना चाहती हूँ। ये स्कारब्रो में हैमिल्टन में दे हैव वन ब्रांच इन मिस ब्रैम्पटन, और अब इन्होंने हैमिल्टन में अपना ये डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें स्माइल ओंटेरियो का प्रोग्राम है। दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, एक्सट्रैक्शन हैं, अगर आप डेंचर्स लगवाना चाहते हैं, इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं, इनविजिबल ब्रेसिस अगर लगवाना चाहते हैं, तमाम इंश्योरेंस प्लान्स को एक्सेप्ट करते हैं। यू कैन गेट गुड डील्स, कोट अनकोट में यू कैन गेट गुड डील्स। 416-993-6 उनका नंबर है 9052105405 हमारे आज के प्रोग्राम को तावन दिया है विलेज टेस्ट ने भी, बेहतरीन खाना, और कल से तो उनका बफे स्टार्ट हो जाएगा। पार्टीज अगर आप करना चाहते हैं, गेट टुगेदर्स करना चाहते हैं, तो यू कैन इवन अगर आपने क्रिकेट के मैच के हवाले से भी कोई गेट टुगेदर करना है तो आप कीजिएगा विलेज टेस्ट पे। फैसल चट्ठा साहब, यू कैन ही कैन गिव यू गुड डील। इतना मैं जरूर कहूंगी कि केयर करने वाला इंसान है, ही विल डेफिनेटली लुक आफ्टर यू इफ यू मेंशन साजो आवाज। इनके चार हॉल्स हैं, दो हॉल को तो मर्ज करके